बाहर के थे,
अब
ही सेवा के अंदर हाजिर हैं। बनारस से दास एक दलाल था बेचारा, किसी दुकान का उगराई करके लाता था लोगों की, किसी सेठ का नौकर होगा ये उगराई का काम करता था। थोड़े ही दिन हुए थे तारतम लाए हुए, लेकिन आतम पर इतना यकीन पक्का हो गया, दिनों की सवाल नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कल दया प्रणामी सानू लगे समझान, सारे बाप दादा तो इन्हें वक्त दे प्रणामी। स्वामी जी कहते हैं कदी 100 साल गिना साथ में, भले तुम 100 साल के क्यों ना प्रणामी हो जाओ, और धनी अनुभव 100 बेर मूल अंकुर दया बिना ले कर्मे डाले। जब अंदर आत्म जागृति नहीं हुई, धनी की पहचान ही नहीं हुई, कुछ विश्वास ही नहीं, पूजते देवी देवता है आग पानी पत्थर को और धनी को छोड़ रखा है, वो काय का बनेगा, वो 100 साल का भी बना रहे। और जिसने 4 दिन लिए हो तो आत्म जागृत हो जाए और धनी के नाम पर फिदा है सेवा के हाजिर जी, मतलब क्या है कि हम कदम पीछे रखें। वो 4 दिन का बना हुआ साथी था, चल पड़ा मरने के वास्ते मुसलमान, पता है कि औरंगजेब छोड़ेगा नहीं, राजी का आशीर्वाद जरूर मिल गया है, लेकिन खेल मौत का है, हमने जाके जब अपनी बातें जाहिर करनी है वो हमें पहचान जाएंगे। और जब ये देखेंगे कि हिंदू आज अल्लाह मोहम्मद कुरान सारी बातें करते हैं, तो एकदम उन्होंने हमारी गर्दनें कटवा देनी है। इसलिए छोड़ कुटुंब कबीले की आस, आज छोड़ दी कि अब इनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकती घर वालों से। धनी की पहचान करके पक्का यकीन है
और साथ बहुत है,
और साथ बहुत है, किसी का नाम नहीं लिखा। स्वामी जी कहते हैं ये 12 मोमेंट है, बाकी भी बड़े साथ थे, साथ है कई तो ईमान तो रखा। अच्छा भाई, शोभा राजी ने तुमको दी है, राजी के चरण तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे से जो होगा काम करेंगे। और कई तो डर के हमारे दिल्ली छोड़ करके ही भाग गए, घरों को चले गए वापस, जहाँ से आए थे छोड़ छाड़ के चले गए। अब ये 12 जने जो है इकट्ठे हुए, कपड़े कुपड़े उतारे जितनी देर में, अब कैसे सुंदर साहब ने बीच में लालदास जी से पूछा, लालदास जी अब क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो बताओ भाई, हम तो तैयार हैं। कहने लगे जब तुम तैयार हो तो ये क्या पूछ रहे हो, क्या करना, तुम चले आओ हमारे पीछे, बस बात खत्म होगी, मरना ये प्रोग्राम। लालदास जी को कोई बात सूझती ही नहीं, बस कोई भी पूछता यही बात कहते हैं, मरना मरना आओ मेरे साथ, मौत के साथ खेलने चलना है, मुसलमानों का राज है, दवा ये लेना है कि अल्लाह ताला ने आज हमको भेजा है, कुरान हमारा है, हमारे घर की बातें इसमें लिखी हैं, मौत का खेल है, आ जाओ। बाल लेकर के सीधे शेख बदल और लालदास जी दोनों जुम्मा मस्जिद के अंदर घुस गए। जैसे हमारे पुजारी जी आगे होकर या कोई महाराज श्री जी आते हैं तो आगे होकर के सब काम कराते हैं, उनका एक इमाम होता है, उस बड़े काजी को इमाम कहते हैं और वही सबको नमाज पढ़ाता है या सब जो कुछ भी सूचना इत्यादि देनी होती है। कौन है भाई, बात करो, मिनट में खत्म। उनसे क्या कहा था, जुम्मा मस्जिद के ऊपर दूसरी मंजिल थी, उस पर उसका घर था। अब ये लालदास जी जाके और मोमिन जोश में आकर के इमाम मेहंदी की आयतें जो सनंद ग्रंथ में थी उसको जोर जोर से लगे गाने। अब 12-1 बजे का समय, जुम्मा मस्जिद में कोई प्रोग्राम नहीं उस समय होता था। इमाम ने जब एकदम इतना जोर से शोर सुना, एकदम धड़क धड़क नीचे उतर आया, उतर के आके जब मोमिनों का चेहरा और उनकी आवाज और उनके दिल के जोश देखे, थर-थर कांपने लगा, दोनों हाथ उठा के कहने लगा कि मेरे अल्लाह ताला, क्या फर्दा रोज़ आ गया है, ये इमाम मेहंदी की बातें कर रहे हैं, मालूम होता है खुदा आ चुका है, क्योंकि काजी था इस वास्ते कुछ ना कुछ जानता था। तो कहने लगे मोमिनो, मैं तुम्हारी मुलाकात औरंगजेब से कराऊं, तुम ये बातें औरंगजेब से करो और लेके मैं तुम्हें साथ चलता हूं, तुम घबराओ नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, औरंगजेब को मैं बुला के दूंगा, तुम्हारे सामने मैं खड़ा कर दूंगा बातें, तुम ये जो कुछ कह रहे हो कि इमाम मेहंदी और ईसा रूहल्लाह आ चुके हैं, ये बस एक बार औरंगजेब के कानों तक आवाज डाल दो, वो तो रातों रात जाग जाग करके कुरान को लिखता और पढ़ता। मोमिन यही चाहते थे, बड़े खुश हो गए, कहने लगे इमाम साहब अगर आप औरंगजेब से मुलाकात करा दो तुम्हारा एहसान भूल ना सकेंगे। अब जुम्मा मस्जिद से एक सड़क ही तो पार दो करनी थी, लेके उनको साथ और सीधा लाल किले ले गए। जिन्होंने नहीं लाल किला कभी देखा, इसी मतलब के लिए देखना। एक ही दरवाजा है, उससे अंदर जाओगे बाएं हाथ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, बाकी दरवाजे बंद रहते हैं। सामने ही वो बारादरी आज भी बनी हुई है, चबूतरा है, उसके ऊपर 12 खंभे हैं और ऊपर छतरी बनी हुई, उसके ऊपर जो है बादशाह आकर के सबको मिला करता था। उस इमाम ने उन 12 मोमनों को उस चबूतरे के सामने खड़ा कर दिया कि भाई आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं इमाम औरंगजेब को अभी अंदर से बुला लाता। इमाम को इजाजत होती थी अंदर जाने की, इमाम साहब ने चपरासी को जो नौकर था उसको कह दिया कि औरंगजेब से कहो इमाम साहब आए, आने दो। गया, जा करके कहा हजूर आप रुके वालों की तलाश करते फिरते थे ना, वो इमाम मेहंदी के लश्कर के आदमी जो है 10-12 हैं, इस तरह से जुम्मा मस्जिद में आकर के इमाम मेहंदी की आयतें पढ़ रहे थे और उनको मैं लेकर के आया हूँ और वो आपसे मुलाकात करते करना चाहते हैं, कृपया जरा लिबास पहन करके अपना तशरीफ बाहर ले आइए। मैंने कहा बस 5 मिनट ठहरे, उनको जाके दिलासा दो, इतनी देर में मैं आता हूँ, क्योंकि हर वक्त बादशाही शाही लिबासों में थोड़ा बैठे रहते हैं। फौरन उसने अपना जो है शाही ठाट का लिबास और सिर के ऊपर जो मुकट मकर वगैरह तुर्रा वुर्रा पगड़ी वगड़ी बांध बांध के हाथ में छड़ी शाही लेकर के और आखिर वहाँ चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया। अब मोमनों की और औरंगजेब की बातें क्या होती हैं, जरा ध्यान के साथ सुनिए। अब सुल्तान ने जब देखा कि 12 जने खड़े हैं तो इशारा करके पूछा कि बोलो भाई तुम मुझे मिलने आए हो, क्या चाहते हो? मोमनों ने क्या जवाब दिया? बस लालदास जी फैसला सामने कर रखा था, जो बात करेगा या लालदास जी करेंगे या शेख बदल बोले और कोई नहीं, बाकी सब खड़े रहो। सर से किसी से और कोई नाम लेकर के पूछा जाएगा तब जवाब देना, नहीं तो दो अब 12 के 12 थोड़े बोलने जवाब देना है। तब पहले ही लालदास जी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये कलमा कह के चुप कर गया। बादशाह ने सुन लिया, फिर दोबारा जो है इशारा जो है सुल्तान ने क्या किया, क्या भाई ठीक है मैं समझ गया कि तुम कलमा जानते हो, अल्लाह ताला पर तुमको यकीन है, पर मुझे जो मिलने के लिए आए हो मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे से क्या चाहते हो, मांगो क्या, जो कुछ तुमने मांगना है मेरे से मैं देने को तैयार हूँ। तब इन्होंने क्या जवाब दिया कि ऐ औरंगजेब बादशाह बार बार आप हमारे से पूछ रहे हो क्या चाहिए क्या चाहिए, तुम्हारे पास रखा क्या, क्या रखा है, ये हिंदुस्तान की 14 तबके राज लिए बैठे हो जो के फना हो जाने वाला है, हमें तेरे दरबार की कोई भी वस्तु कोई चीज कोई दरकार नहीं है, हमें नहीं चाहिए तेरे राज की से, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं तेरे साथ कुरान की बातें करना, और जिस वक्त हमारी और तुम्हारी बातें हो तो ये काजी जितने खड़े, क्योंकि उस काजी ने जाके सबको बता दिया, अब पार्लियामेंट के बड़े बड़े काजी शेख निजाम शेख इस्लाम सुलेमान रजवी कहाँ, अब वो आ तो गए लेकिन जान सबकी दुख दुख हो रही है कि अब ये बात खुल जाएगी कि हमारे पास भी रुका आया था और अब हमारी नौकरियां गई और जान खत्म करेगा, ये बादशाह हमें छोड़ेगा नहीं। अब वो खड़े उधर खड़े हैं और मोमन तड़ाक से जवाब दे रहे हैं कि ऐ औरंगजेब बादशाह यही चाहते हैं कि कुरान को रख के बात करेंगे, हम मुजबानी नहीं करेंगे, और जिस वक्त हम कहें तुम सुनो तुम कहोगे हम सुनेंगे, हमारे दोनों के बीच में यानी हम और आप जब बातें कर रहे हों इन काजियों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए रुका हमने चिपकाया था, जिस दिन तुम ईदगाह गए थे हमारा रुका फाड़ करके ये शेख अब्दुल्ला ने फेंका था जेब में डाल लिया था, ये शेख इस्लाम तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज है, पूछो इसके घर 2 महीने हमने धक्के खाए, ये तुम्हारा शेख निजाम खड़ा है उस्ताद इनसे पूछो, एक एक का नाम गिना दिया 5 का, ये खड़े हैं इनसे पूछिए, इस वास्ते जिन्होंने तुम्हारे साथ मुलाकात भी हमें नहीं करने दी और हमारा पैगाम तुम्हारे तक नहीं पहुंचाया, क्या ये हमारी बातें आपको सुनने देंगे, और आपकी बातें हमारे तक आने देंगे? ये दुनिया की कुर्सियों के भूखे हैं, इनको अल्लाह ताला की कोई भी चीज चाहिए नहीं। अब ये बात जब सुनी मोमनों की, तुर्त काजी जो शेख इस्लाम था, खड़े खड़े ही एमरजेंसी मीटिंग पास कर दी, शरीयत का नया कानून लागू कर दिया, बादशाह सलामत। भले आप बादशाह हैं, शरीयत आपको अकेले में इनको मिलने की इजाजत नहीं देती। उस वक्त बादशाह ने क्या जवाब दिया? मैं बादशाह छोड़ सकता हूं लेकिन इनसे मुलाकात अवश्य कर। तुम यही जानते हो? कहने लगे, हजूर हमें और किसी बात का डर नहीं। ये गंगाराम किराने की दुकान रोज हमें से सामान लेते, ये चंचल दास है सिर्फ ये दुकान है, ये गंगाराम है उग्राई करने वाला। हिंदू लोग जो के कुरान का नाम सुनते डरते हैं, आज वो कहते हैं कुरान हमारा है और अल्लाह ताला हमारा है। खुद सोचिए जरा कुछ बुद्धि के साथ। मालूम होता है किसी हिंदू राजा ने इनको पैसा बहुत ज्यादा दे दिया है और ये अपनी जान भी फना करने के लिए यहाँ आ गए हैं। ये मुसलमान और इमाम मेहंदी के लश्कर के आदमी नहीं है, ये हिंदू हैं और ये तुम्हें मार डालेंगे और हमें कोई शक नहीं। बाकी रही बात कुरान करने की, किसी भी जितने इतने काजी तुम्हारे दरबार में रहते हैं, किसी पर भी तुम्हें विश्वास नहीं। जिसको तुम्हें विश्वास हो, जिस काजी पर, उस काजी की ड्यूटी लगाओ। हम में से वो काजी इनके साथ पहले कुरान से बातें करेगा? अगर हकीकत में शब्द मुक्तात जो मोहम्मद साहब ने कहे थे कि अल्लाह ताला के बिना कोई नहीं खोल सकता, वो मैंने ये खोल करके बता देंगे, हम इनकी तसल्ली कर ले, फिर बेशक आप एकांत में बैठ करके बातें करना, हमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन जब तक हजूर हमारी तसल्ली ना हो जाए, हम तसल्ली करना चाहते हैं तो केवल आपकी जान की रक्षा करने के लिए। ये 12 जने आप अकेले हैं और हम पास नहीं होंगे, 12 जने मिल करके आपका गला घोट दें, कुछ छुरा मार दें, फिर हम क्या करेंगे? अब इस चीज ने बादशाह के दिमाग को घबरा दिया। बात ठीक, जब ये हिंदू हैं और वो एक काजी पहले कुरान से तसल्ली कर लेगा तो जो सूचना काजी की रिपोर्ट होगी वो मेरे पास आ जाएगी। तो बादशाह सलामत ने सबसे पहले ड्यूटी ही किसकी लगा दी? सुप्रीम कोर्ट का जज जो शेख इस्लाम काजी था उसी के जिम्मे लगाया कि अच्छा आपकी बात मंजूर करता, लेकिन ये याद रख लो मैं इनसे बातें जरूर करूं। तुम तसल्ली करना चाहते हो कुरान से, तुम ही कर लो, लेकिन इन पर कोई सख्त जुल्म या दंड या इनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये मेरा हुक्म है, इनको शाही मेहमान समझ करके मेरे दरबार में ये आए हैं, मेरे दरबार में ये आए हैं, इनको अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ मंगवा करके बाजार से देना, शाही मेहमानों की जैसे खिदमत होती है वो सेवा इनकी करना। बस ले जाओ इनको और कुरान रख करके इनसे बातें करो और जो भी फिर फैसला हो वो मुझे बताना। ये कैसे बादशाह अंदर चलेंगे? अब बादशाह चला गया अंदर, शेख इस्लाम ने बुला के सुपरिंटेंडेंट पुलिस को और सिपाहियों को कहा इनको पकड़ो, हथकड़ियां लगाओ रस्से और ले जाओ जरा कोतवाल के पास। अब बादशाह तो कह गया कि शाही मेहमान बना करके इनको मलीजे खिलाना, हम जिनको अच्छे भोजन कहते हैं, पदार्थ कहते हैं उसको वो उर्दू में मलीजे कहते हैं। और उसने पुलिस के हवाले करवा के बड़े कोतवाल के पास भेजा और साथ हुक्म दिया कि ये हिंदू कल के बादशाह को मारने के लिए आए थे, आज रात जरा इनकी अच्छी तरह से खिदमत करना। खिदमत का मतलब समझ गया हो ना? खूब मारना और इनकी खलड़ी उतारना, फिर पता करना ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। बक पड़ेंगे पुलिस की मार के सामने तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, एक मिनट में कह देंगे हम हिंदू हैं और किस बादशाह ने हमको मारने के लिए भेजा। भेज दिया गया। अब शाम का हुआ समय, कोतवाल ने सबसे पहले तो रोटी मंगवाई, दो के लिए मीट वाली रोटी मंगवाई, क्योंकि दो बीच में मुसलमान थे, कायमुल्ला और शेख बदर, और 10 के लिए वैष्णव भोजन हिंदुओं वाला मंगवाया, जुदा जुदा भोजन। ये पहली परीक्षा थी मोमनों की। लो भाई तुम दो मुसलमान हो, ये तुम्हारा भोजन है, रोटी है खा लो। लो भाई हिंदू, ये तुम्हारी रोटी है, रोटी तो खाओ, उसके बाद बात की जाएगी। अब लालदास जी कहते हैं, कोतवाल साहब यहाँ ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, ये इमाम मेहंदी लश्कर के आदमी है, वो मीट वाली रोटी तुम खा लो, क्योंकि कुरान पाक के अंदर कहीं भी गोश्त खाना लिखा नहीं। हम इन 10 जनों की जो रोटी है ये हमारे 12 के लिए बहुत काफी है। सब जने रोटी ले गए, बस अल्लाह ताला की जय, वहां प्रार्थना की जय नहीं बोल सकते हैं, बस बैठ गए खाने के लिए, सबने मिलके इकट्ठे ही भोजन, हिंदू मुसलमान का सवाल क्या। जब उन्होंने शरीयत छोड़ दी, घर छोड़ दिए, तातम ले लिया, फिर मुसलमान पना रहा कहाँ। मस्जिद उन्होंने छोड़ दी, रोजे उन्होंने छोड़ दिए, नाम ही तो मुसलमान वाला है, तातम लिया, राय शर्मा जी का नाम, प्राणनाथ प्यारे की जय बोल रहे हैं, बैठ करके सबने भोजन किया। ये रिपोर्ट कोतवाल ने नोट कर ली। उसके बाद जब रात के 10-11 बजे बस जो कुछ कुरान में पहले से लिख रखा था, 1100 साल पहले राजीव राय ने कुरान में ये बात लिखवाई थी मोहम्मद साहब से कि इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर के जब मोमिन जाएंगे तो शरा तोरा का बादशाह और काजी उनकी पहचान नहीं कर सकेंगे। इस वास्ते जो है रात औरंगजेब के उस कोतवाल ने मैं जितना मार सकता था मार, तुलस की मार राज्य किसी को ना, मैं मारा जितना मार सकता, लेकिन किसी भी मोमेंट ने सी तक नहीं, बस जब मार पड़े या अल्लाह या इमाम मेहंदी या परवरदिगार, बस इसी का नाम पुकारे, खूब काबू रहे कि ना आंसू बहे ना चीख निकले, मुंह से नाम निकले तो एक राज्य मलाइका निकले। अब इतनी मार पड़ने के बाद स्वय अल्लाह मोहम्मद या राजी के नाम के बिना मोमन ने कोई शब्द मुंह से नहीं निकाला। वो जो कोतवाल था वो रूपर और लिख करके बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, तुम्हारा हुक्म था खिदमत करने का, सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे हुक्म दिया कि इनको मारो, और मैंने इतना मारा है कि इस जुल्म की सजा मुझे रोज हशर के देनी पड़ेगी। अगर आज कोई मुसलमान भी होता, जितनी सजा मैंने इनको दी है, मुसलमान होते हुए मार के डर की वजह से कह देता जी मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, और इस वास्ते ऐसा गुनाह नजर करम करके कृपया मेरे से दोबारा ना करवा। एक कापी सुलेमान को भेज दी शेख इस्लाम को जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, और एक बादशाह के पास रिपोर्ट चली गई। अब जब शेख इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये बात पहुंची कि रोटी भी इन्होंने एक जगह खाई है और इतनी मार पड़ने पर ये बात कहते हैं, तो कोई बात जरूर ठीक है। उसी वक्त चपरासी को भेजा, कोतवाल को कहो कि इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जाए। मोमनों को उसी तरह से दरबार में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया। अब उधर दरबार में सुप्रीम कोर्ट का जज शेख इस्लाम बैठा है, इधर लाल दास जी बातें करते हैं, उन बातों को जरा सुनिए और विचार करिए। अब ये एक एक बात करना जरा। अब शेख इस्लाम के साथ लाल दास जी भरे दरबार के अंदर, अब जानते हो ऐसे में तो हजारों की संख्या तमाशबीनी में पहुंच जाती है, देखने के वास्ते क्या क्या बातें हुई। शेख इस्लाम और लाल दासी की जो बात हुई उसको सुनो जरा।
हमारे पैगंबर ने
कहने लगे, हजूर कुरान मंगवाओ, मंगवाया गया। कहने लगे जरा कुरान को खोल करके वो सुपारा बताओ जहां तुम्हारे मोहम्मद साहब ने ये लिखा हो कि जो अल्लाह ताला या मोहम्मद के ऊपर यकीन लावे उसकी खलड़ी उतारना जैसे आपने हमारी उतारी। अपना जो कुर्ता पहन रखा था वो उतारा, दान पड़े हुए थे, पीठ काली स्याह भरी थी, दान रखते हुए कहते ये जो हशर हमारा किया है तुमने, ये कुरान के किस सुपारे में लिखा है क्योंकि तुम तो कुरान के मालिक हो ना, इस वास्ते ये कुरान में लिखा कहाँ है हमें खोल के बता दो। नंबर दो, चोरी की थी क्या हमने? तो बताओ किसकी की? छिनारी की है, किसी बहन बेटी की इज्जत उतारी है? चोरी की है, किस दंड के बदले में आपने हमको कोतवाल के हवाले किया है, इसका भी हमको जवाब दो। क्यों हमने क्या पाप किया है? चोरी हमने नहीं की, डाका हमने नहीं डाला, छिनारी हमने नहीं की, किसी की बेइज्जती नहीं की। यही तो गुनाह किया है कि अल्लाह और मोहम्मद पर यकीन लाए हैं ना, इस गुनाह के बदले में ये हाल आपने किया है। ये तुम्हारे कुरान में लिखा कहाँ, जरा खोल के हमें बताओ तो सही। और नहीं तो अब भी हमारे से कलमा सुन लो कि हम कौन हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर जो है दोबारा लालदा सुने भरी सभा के अंदर जो है बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम का कलमा पढ़ दिया, बस। इंसानी तो होते हैं, मुसलमान भी कोई ऐसे तो नहीं होते हैं कि पत्थर देना ठीक है कि उन्होंने बकरे खा रखे होते, उनके खून में दया नहीं होती। जब ये बात सुनी काजी रो पड़ा, क्योंकि ये कलंक तो मोहम्मद साहब के नाम पर लग रहा है और कुरान पर जो है धब्बा लग रहा है। और फिर लालदास जी सवाल करते हैं कि तुम काजी हो ना और सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो जरा पहले दिन का किस्सा खोल के बता दो। अल्लाह ताला ने जो छह दिन आना है, उन छह दिनों में पहले दिन का किस्सा क्या, उसका बाबा बताएगा। अब वो लोग तो पहला दिन इतवार को गिनते, और पहला दिन खुदा का कौन सा है? ब्रिज का। अब आवे महीना तो आवे कहां से? तब उसी वक्त शेख इस्लाम ने बादशाह को पूरी रिपोर्ट लिखी कि ऐ हजूर, कल से लेके इस वक्त तक जितनी भी रिपोर्ट मेरे पास आई है और दरबार में बातें हुई हैं, ये हकीकत में इमाम हैंडी के आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर अब आप हुक्म मुझे दो, इनको मैं अपने पास ले जाऊंगा, घर रखूंगा, रोटी मैं खिलाऊंगा, सेवा मैं करूंगा, अब इनको दंड कोई नहीं दिया जाएगा। और जब मेरी तसल्ली हो जाएगी फिर बेशक आप भी जो है बैठ करके इनसे बातें करना, हमें कोई इतराज नहीं होगा। बादशाह ने तुरंत चिट्ठी उसी वक्त फाइल पे हस्ताक्षर कर दिए कि शाबाश, मैं तुमको जो है जितना खर्चा खजाने से हो करना, पर इनकी खिदमत करना। बादशाह तो बार बार यही बात रोता था कि इनको कोई किसी किस्म का कष्ट ना हो, इनकी खिदमत करना जैसे मेहमानों की करना है। बस अब क्या होता है, बस बादशाह हुक्म देता है कि इनको मलीदे बढ़िया बढ़िया मिठाइयां, मेहमानों की तरह इनकी खिदमत करो और इनकी सेवा बराबर करना, कोई फर्क ना पड़े। आपन से नाराज होकर के नहीं जाएंगे, इनको नाराज करके ना दरबार से भेजना, अल्लाह ताला के दरबार में रोजे हशर के मुंह काला हो जाएगा, नहीं तो तब दरबार खत्म हो गया। शेख वो इस्लाम जो है अपने घर उनको ले गया, सारे मोमिनों को एक दिन रखा चौकी, जहां रखी चौकी पर उसकी निगरानी के वास्ते, जिसको नजरबंद कहते हैं, खुली जगह पर रख दिया कि आज आ सकते हो तुम, कोई घबराना नहीं, लेकिन चौकी पुलिस की रखी। उनको दूसरे तीसरे दिन अपने घर बुलाया, काजी ने उनसे अब बातें की, तब वहां बैठ करके अब कुरान की बातें जो है करने लगे। अब और लाल दासी कहते हैं कि हजूर आप काजी हैं ना, जरा बताइए तो सही, इन्ना इंजलना हो फी लेल तुल कदरे, फी लेल तुल कदरे माव तरका का अर्थ क्या है, कहां से अर्थ लाए? ये तीसवा सुपारा उसके अंदर की ये बातें, जहां पर तीसवा सुपारा आम सिपारा है उसमें सोरा उल फजर, ध्यान के साथ सुनिए, सुनने की बातें। फजर कहते हैं प्रातः कब होगी, दस रातों के बाद ग्यारहवां, जब दस रातें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, फजर का समय होगा। बिल्कुल हिंदी में टीका लिखा हुआ है उसका, हम कुर्बान हैं उन दस रातों पर जो अंधेरे के मिटा देंगी और फजर का समय आएगा, हम शुक्र करते हैं कि वो रात दस बीते और ग्यारहवां दिन फजर का आए। यह है इन्ना जुल्ला का अर्थ। और क्या लिखा अल्लाह ताला ने सूरह कदर कि वो मोमिन कब दुनिया में उतरेंगे, इन्ना इंजलना फी लेल तुल कदरे, कि ऐसी एक लंबी रात होगी कदर की जो हजार महीने से भी बड़ी रात होगी। काजी साहब बताओ वो रात कौन सी? अब यहां सर्दियों में बड़ी से बड़ी रात 14 घंटे की होती है, उनका बाबा बतावेगा कि हजार महीने की रात कौन सी? हजार महीने की रात से 84 साल से भी अधिक दिन बन जाते हैं लगभग। तो वो कब पूरे होते हैं? जब 26 साल की आयु में। सतगुरु देवचंद जी ध्यान के साथ सुनना जरा, डेट को भूल मत जाना, कोई कहीं से ठोका ठोकी कह देते हैं जी 84 साल तब हुए जी 1638 से लेकर के, और 1638 से 84 गिने तो 1722 बनते हैं। ये हजार महीने की रात नहीं, फजर को होना है। फजर किस दिन से होना शुरू हुआ? जिस दिन से बाल मुकंद जी ने आकर के उनकी आत्मा की पहचान करवाई, और सतगुरु श्री धनी देव चंद जी नित वृंदावन का चितवन 1664 26 साल की आयु थी जिस समय ये वाक्य हुआ। अब 1664 से 84 साल के नाम पूरे 48 बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। उस समय पूरा कुलजम सुरु साहब कुतर चुका, फजर जाहिर हो गई। इसको कहते हैं फजर का दिन जाहिर होना। ये सारी बातें खोल खोल करके मोमेंट एक एक दिन का, क्योंकि काजी अब प्यार करने लगा, भाई हम नहीं जानते हमें बताओ। फिर दूसरे तीसरे दिन 6 दिन के किस्सा पूछा कि पहले दिन से लेके 6 दिन के मायने बताओ। तब लालदास जी और भीम भाई बैठे हैं, बैठ करके 6 दिन का किस्सा बताया कि भाई ये जो दिन तुम लिए बैठे हो ये के अल्लाह के दिन है कि ये तो आजादी आजादी, ये जो पैगंबर हैं तुम्हारे दुनिया के फरिश्ते ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो इनके दिन हैं। अल्लाह ताला आएगा तो उनका दिन कोई 12 घंटे का या होना है? हजार महीने की रात लिखी है तो दिन कैसे होंगे? तब उन्होंने कहा पहला दिन कब हुआ? जब हूद नबी के घर तूफान आया, यानी ब्रिज की लीला। दूसरा दिन कब हुआ? जब नूह नबी पैगंबर ने किश्ती बनाई थी अरब के अंदर। अरब के अंदर तो भाजी आप जानते हैं पानी पीने को भी नहीं मिलता। हुक्म हुआ, नूह नबी वहां पर थे अरब में, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ नूह नबी तू किश्ती बना। ओहो, अल्लाह का हुक्म मान के किश्ती बनाने लग गया कि यहाँ तूफान आने वाला है। ये प्रैक्टिकल हुआ अरब के अंदर जब मोहम्मद साहब थे। तो दुनिया उन्हें नूह नबी को पैगाम मजाक करने लगे कि नबी साहब यहाँ पानी तो पीने को मिलता नहीं, तुम किश्ती किस वास्ते बना रहे हो? वो कहने के किश्ती इस वास्ते बना रहा हूँ कि अरब में तूफान आने वाला है, तुम लोग नहीं जानते हो तो देख लेना। नूह नबी के घर तूफान आया, जब यानी नूह नबी थे अरब में तो इतना बड़ा तूफान आया कि सिर्फ 40 जुस्त और जोड़ा जोड़ा बीज का उस नाव में रख करके वो किश्ती जंगल में ले गए। अब ये नहीं बता सकते वो जंगल कौन है, वो 40 जुस्त कौन है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, और वो जंगल कौन है, नित्य वृंदावन वहां पर पहुंचा। ये सारे भेद बताए। फिर तीसरा दिन अरब का बताया कि जिसको तुम रसूल कहते हो वो रसूल नहीं था, वो खुद खुदा बन के खुद रसूल आया था, क्योंकि अर्श में कोई जब कहते हो कि कोई सानी नहीं है उसका, तो अल्लाह ताला की बातें कौन करके आएगा? खुद अल्लाह ताला ही काजी बन रसूल बन करके अरब में आया। सारी बातें आने की अपनी बताई, लेकिन किसी ने उनको पहचाना नहीं। और फिर निशान दिया कि 120 वर्ष में ईसा अल्लाह पहले आवेगा और फिर इमाम मेहंदी आएगा और फिर छठा दिन जुम्मे की नमाज का होगा। वो सारे मायने खोल करके बताए, वो बात भी खत्म हो गई। इस तरह से रोज की बातें सुन करके कुछ काजी एक दिन ढेर सारे इकट्ठे हो गए। उन काजियों ने मोमनों से सवाल किया, मोमनों मोहम्मद साहब ने ये बात कुरान में लिखी है कि जब कोई अल्लाह और मोहम्मद पे नमाज लावे तो उसको 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, और हमने इतने दिनों से तुमको देखा है, बातें तुम अल्लाह और मोहम्मद और अर्श अज़ीम की करते हो पर तुमने नमाज कभी पढ़ी नहीं। ये वो बड़ा काजी आया था इमाम मस्जिद का। तब शेख फजल कहने लगा काजी साहब ये भी पढ़ा है कि ये नमाज लिखी किनके वास्ते है? नमाज उन्हीं के वास्ते लिखी है जो वास्ते दुनियादारी के जिंदा रहे ज्ञान के साथ, जैसे हम सब सुंदर साथ बैठे ग्रस्त वाले हैं कि नहीं। मतलब जो आदमी वास्ते ग्रस्त के जीता है, ग्रस्ती है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, उनका पालन करता है, उनको 24 घंटे में कम से कम 5 बार बैठ करके अल्लाह की नमाज पढ़नी कम से कम, और वही 5 वक्त की आरती श्री प्राणनाथ जी ने हमको बताया। और आज भी पन्ना जी में वो 5 आरती होती है। कौन सी? पहले मंगल आरती, और दूसरी श्रृंगार आरती, फिर तीसरी उठापन की आरती, और चौथी संध्या आरती, और 5वीं सेना। उसी वक्त ही आप देख लिया करो पन्ना जी में कब हो, उधर मंदिर का घड़ियाल बजेगा आरती का, और उधर मुसलमानों के मस्जिद की नमाज पढ़ेगी। वक्त में कुछ फर्क नहीं, सिर्फ उनकी बातें जितनी है अरबी भाषा में है और अपनी बातें हिंदी भाषा में, और कुछ भी नहीं। एक एक बात के जब मैंने खोले तो वो जो काजी ने कहा था, उनका महाराज काजी साहब हजूर वो नमाजें आपके लिए हैं, क्योंकि आप किनके वास्ते जी रहे हो? बीवी के, बच्चों के पालने के वास्ते तुम काजी बने हो, और पैसे लेते हो मस्जिद से और उनको पालते हो, इसलिए नमाज तुम्हारे वास्ते जरूरी है। हमारा उठना